पृष्ठ संख्या 128। सुधारकों ने जन वित्त व्यवस्था, राजकीय बजट तथा वित्तीय विवरणों में सुधार करने की भी कोशिश की। कर व्यवस्था, आंतरिक महसूल, सैन्य व्यय, राजस्व तथा सरकारी खर्चों में सुधार तथा परिवर्तन करने की कोशिश की गई। राजस्व परिषद, रेवेन्यू बोर्ड को आदेश दिया गया कि वह वार्षिक राजस्व तथा व्यय का ब्यौरा तैयार करें तथा उनका मासिक विवरण पेश करें। नए तरीकों पर आधारित पश्चिमी व्यवस्था की तरह थल तथा नौसेना के लिए कड़ा प्रशिक्षण आरंभ किया गया। एक ही मापदंड के हथियार बनाने की व्यवस्था की गई। गैर कानूनी सेनाएं भी बंद कर दी गई तथा उनके सदस्यों को अन्य व्यवसायों में जाने को कहा गया। राज्य की ओर से उन्हें दिए जाने वाले भत्ते भी बंद कर दिए गए। इन सुधारों का विरोध मुख्यतया दो मुद्दों को लेकर हुआ था। पहला, संदेश कम्युनिकेशन तथा दूसरा, संरक्षण पैट्रोनेज के प्रश्न पर। खांग के उद्देश्य इस हद तक लोकतांत्रिक थे कि वह लोगों के विचार सम्राट तक पहुंचाना चाहते थे तथा लोगों के विचारों की ओर सम्राट का ध्यान दिलाना चाहते थे। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह एक संस्था स्थापित करना चाहते थे जहां बिना अधिकारियों के मध्यस्थता के सरकार तथा जनता का प्रत्यक्ष रूप से संपर्क हो सके। इसमें दो समस्याएं थीं। प्रथम, केवल उच्च पदों के अधिकारी ही सम्राट को सीधा प्रस्ताव भेज सकते थे। किसी भी सुधारक के पास ऐसा पद नहीं था। वास्तव में यह सुधार कुछ पदों पर आसीन अधिकारियों के सहयोग से ही लाए गए थे। इसी सहयोग के कारण इन अधिकारियों को बाद में काफी कष्ट उठाना पड़ा। दूसरा, ऐसी व्यवस्था में अधिकारियों को ऐसा कोई भी प्रस्ताव जो नौकरशाहों के हित में न हो रद्द करने का काफी मौका दिया गया। सम्राट ने हुक्म दिया कि सभी अधिसूचनाएं जो उनके अपने गुट के सुधारकों द्वारा भेजी गई हो उन्हें बिना पढ़े ही सम्राट तक पहुंचाया जाए, चाहे वह किसी निम्न स्तरीय अधिकारी द्वारा ही क्यों न दी गई हो। उच्च स्तरीय अधिकारियों ने इसका कड़ा विरोध किया। दो विषयों को लेकर संकट उत्पन्न हुए। क, यिंग कुएई जो धार्मिक प्रबंध परिषद के अध्यक्ष थे को प्रगति में बाधक माना गया। एक दूसरे अधिकारी वंती ने ऐसा दोष लगाने वालों को दंड देने की मांग की। वंती को पदच्युत कर दिया गया। वांग चाओ धार्मिक प्रबंध परिषद के निम्न स्तरीय ऑफिसर थे। उन्होंने सम्राट को जापान जाकर स्वयं मेजी सुधारों का निरीक्षण करने का प्रस्ताव भेजा, किंतु सम्राट को इस बात से अवगत नहीं कराया गया। जब सम्राट को पता चला तो उसने कई उच्च स्तरीय अधिकारियों को पदच्युत करके वांग चाओ को पदोन्नति दी। इस घटना के परिणाम स्वरूप दरबार के रूढ़िवादी विरोधियों द्वारा विद्रोह करना स्वाभाविक ही था। संरक्षण का प्रश्न भी अत्यंत उत्तेजक था। राजमाता तशशी की शक्ति का आधार भी राजकीय संरक्षण था। अगर पदोन्नति तथा पदच्युत करने का अधिकार सम्राट ले लेता तो राजमाता की शक्ति समाप्त हो जाती। रोंगलू जो उत्तरी सेना का सेनापति था को भी राजमाता का संरक्षण प्राप्त था। कुआंगशू को इस नाजुक परिस्थिति का आभास था, इसलिए उसने उच्च स्तरीय अधिकारियों को पदच्युत करने का कठोर कदम नहीं उठाया तथा सुधारकों को केवल निम्न पदों पर ही नियुक्त किया। यह प्रबंध तब तक चला रहा जब तक संस्कार मंडल बोर्ड ऑफ रिट्स के अधिकारियों को सम्राट ने पदच्युत नहीं किया के अधिकारियों को सम्राट ने पदच्युत नहीं किया। इसी समय रोंगलू ने अपने 39 समर्थकों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की जो सुधार कार्य कर रहे थे। पृष्ठ संख्या 130। किंतु सम्राट ने इसे रद्द कर दिया, इसलिए तससी ने सुधारों का विरोध उनकी अपने स्थिति के लिए खतरा पैदा हो जाने के कारण शुरू किया। कुआंगशिव को ज्ञात था कि रोंगलू के प्रस्ताव अस्वीकार होने पर प्रतिक्रिया अवश्य ही होगी। अब इन सुधारकों को अपने रास्ते से राजमाता को जबरदस्ती हटाने का मार्ग चुनना पड़ा। 16 सितंबर को युवन सरखाए को महानगर मंडल का अध्यक्ष तथा पेयांग सेना मुख्यालय का अधीक्षक नियुक्त किया गया। राजमाता ने सम्राट को खांग योवेई की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सम्राट ने युवन को आदेश दिया कि वह बिना कष्ट पहुंचाए राजमाता को गिरफ्तार करे। युवन ने इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए रोंगलू को सुधारकों की सारी योजना बता दी, जिसके कारण सुधारकों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि युवन को थियनचिन जाकर रोंगलू को खत्म करके राजमाता को गिरफ्तार करने का हुक्म मिला। 21 सितंबर को सम्राट को पकड़कर नज़रबंद कर दिया गया, जहां 1908 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके विचारानुसार युवन की दागाबाजी के कारण यह असफलता मिली, किंतु वास्तविकता यह है कि इससे असफलता की गति और तीव्र मात्र हुई। कुआंगशिव तथा खांग योवेई अधिकारियों को न तो उत्साहित ही कर पाए और न ही उनमें आत्मविश्वास पैदा कर पाए। इस गलती का आभास खांग को बाद में हुआ। सुधारक नेता वास्तव में सिद्धांतवादी थे, उन्हें राजनीति में कोई अनुभव नहीं था। परिणाम जाने बिना ही उन्होंने 103 दिनों में 110 घोषणाएं जारी की। स्वयं प्रशासन सुधारों को लेकर दो भागों में बटा हुआ था, दक्षिणी गुट जिसने सुधारकों का साथ दिया तथा उत्तरी गुट जिसने राजमाता का समर्थन किया। हुनान ही एक ऐसा राज्य था जहां सुधार लागू किए गए। अन्य राज्यों के अधिकारियों ने या तो सुधारों पर ध्यान नहीं दिया या फिर अन्य स्थानों के सुधारों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते रहे। भिक्षुओं ने भी इनका विरोध किया। उन लोगों ने भी विरोध किया जिनके पूजा स्थलों, मठों अथवा भवनों को विद्यालयों में परिवर्तित किया जा रहा था। सुधार विरोधियों का मत था कि दक्षिणी की चीनी प्रणाली पश्चिमी प्रणाली से बेहतर थी तथा वहां परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त उनका विश्वास था कि चीनी मानव श्रम तथा अनुभव अधिक अच्छे परिणाम पा सकते थे। मशीनों के उपयोग का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता तथा प्राकृतिक साधन भी जल्दी समाप्त होते। लोगों में भी सुधारों के प्रति उत्साह नहीं था। हालांकि सरकारी अधिकारियों ने पूरे प्रयत्न किए किंतु जनता को उत्साहित न कर पाए। 21 सितंबर के पश्चात रूढ़िवादी तथा सुधार विरोधियों की विजय हुई। प्रतिक्रिया आरंभ हुई। काफी सुधारकों की हत्या करवा दी गई तथा अनेकों को पदच्युत करवा दिया गया। खांग तथा लियांग चीन छोड़कर भाग गए। राजमाता ने अपने समर्थकों को उच्च पदों पर आसीन किया। सभी सुधार कार्यक्रम बंद हो गए। 26 सितंबर की घोषणा ने केवल कागजों पर ही किए गए सभी सुधारों को रद्द कर दिया। पुरानी परीक्षा पद्धति फिर से लागू कर दी गई। चीनी प्रगति चाइनीज प्रोग्रेस अखबार बंद कर दिया गया। ऊपर से सुधार असफल दिखाई पड़ते हैं, किंतु उनसे कुछ लोगों की कल्पना शक्ति उत्साहित हुई। उन्हें लगा कि सुधारवाद एक बंद गली थी, सिर्फ क्रांति तथा मांचू सरकार का पतन ही चीन की समस्या को सुलझा सकता था।